ये BBC उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में खसूसी प्रोग्राम नीम रोज। ये प्रोग्राम आप हर रोज इसी वक्त शॉर्टवेव पर 19 मीटर बैंड पर 15,310 किलोहर्ट्ज और 22 मीटर बैंड पर 13,650 किलोहर्ट्ज पर सुन सकेंगे। ये प्रोग्राम रेडियो के अलावा हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी बराह रास्त नशर किया जाता है।
जम्मू कश्मीर की खबरों के खुसूसी प्रोग्राम नईम रोज के साथ सकलैन इमाम का सलाम। पाकिस्तान ने मसले जम्मू कश्मीर को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और नस्ल कुशी की बुनियाद पर इंसाफ की आलमी अदालत में ले जाने का ऐलान किया है।
हमारे पास एक ठोस केस है जेनोसाइड के हवाले से जो ये मकबूजा कश्मीर में हो रहा है।
तफसील आलमी खबरों के बाद
नीम रोज में नालिश फैज से खबरें सुनिए। इंडिया और पाकिस्तानी हुकाम ने दावा किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग से दोनों जानिब हलाकते हुई हैं। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने इस सिलसिले में ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज ने इंडियन फायरिंग का मौसर जवाब दिया है जिसके नतीजे में 6 इंडियन फौजी हलाक हुए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर के मसले को हल करने के लिए बतौर सालिस किरदार अदा करने की पेशकश की है। उन्होंने ये बात दोनों ममालिक के वज़ीरे आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू के एक दिन बाद व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कही। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने दावा किया है कि इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के शहर बारामूरा में एक मुबैना अस्कृत पसंद को झड़प के दौरान हलाक कर दिया गया है। इंडियन हुक्काम के मुताबिक इस झड़प में 2 पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए हैं। अमरीका की अफगानिस्तान के अमूर के खसूसी सफारतकार जलमे खलीलजाद अफगान तालिबान से बातचीत के लिए कतर रवाना हो गए हैं। जलमे खलीलजाद दोहा में तालिबान के नुमाइंदों से अफगानिस्तान में जंग को खत्म करने के लिए मुजाकरात के सिलसिले का फिर से आगाज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में ऑयल टैंकर्स और सामान बरदार बहरी जहाजों को ईरान की किसी भी मुमकिन कार्रवाई से महफूज रखने के लिए अमरीका की सरबराही में बनने वाले इत्तेहाद में शामिल होने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि ये इकदाम ऑस्ट्रेलिया के मफाद में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए खाम तेल का 15% और बेहतर तेल का एक तिहाई हिस्सा खलीज से गुजरता है। सूडान में साबिक सदर उमर अल बशीर के माजूर होने के 4 माह बाद मुल्की फौज और एहतजाज करने वालों ने हुकूमत के सिविलियन कंट्रोल में मुंतकली के लिए खुद मुख्तार काउंसिल का क्याम मुकम्मल कर लिया है। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में काउंसिल के तर्जमान ने काउंसिल के मेम्बरान के नाम बताए। ऑस्ट्रेलिया में मसीहों के कैथोलिक फिरके के मजहबी रहनुमा कार्डिनल जॉर्ज पेल की अपनी सजा के खिलाफ दायर दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है। उनको बच्चों के साथ जिंसी ज्यादती करने पर मार्च में 6 साल की कैद की सजा मिली थी।
BBC उर्दू सर्विस जम्मू और कश्मीर के आवाम के लिए नीम रोज के नाम से खसूसी नशरियात पेश कर रही है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वह जम्मू कश्मीर के तनाज़े को इंसाफ की आलमी अदालत में ले जा रहा है। जम्मू कश्मीर की इंडियन आइन में खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इंडिया से तमाम तजारती और ट्रांसपोर्ट ताल्लुकात के खात्मे का ऐलान किया था। कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ाजा शाह महमूद कुरैशी ने एक निजी टेलीविज़न से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान मसले कश्मीर को इंसानी हकूक की पामाली की बुनियाद पर आलमी अदालत से रजू कर रहा है।
ये फैसला असूली हुआ है कि हमें वहाँ जाना है। हम अपने लीगल ऑप्शंस पर गौर कर रहे थे तो वज़ीर आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ था जिसमें लॉ मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, मैं भी था, और हमने एक पाए के इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट से भी रुजू किया था, उनको भी दावत दी थी, उससे मशावरत की थी, और हम समझते हैं कि ये हमारे पास एक ठोस केस है जेनोसाइड के हवाले से कि जो ये मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उसको हम उनकी नज़र करें। देखिए, हमने देखना ये था कि लीगल ऑप्शंस क्या हैं, इसको एग्जामिन कर रहे थे, और एग्जामिन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हाँ बिल्कुल हमारा एक ठोस मौकिफ है और वहाँ ले जाया जा सकता है, और मशावरत के बाद अब ये फैसला हुआ है।
ये थे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ाजा शाह महमूद कुरैशी। उधर एक मरतबा फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर मसालहत कराने के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क से सहाफ़ी सलीम रिज़वी।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اپنے دفتر اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر ایک مرتبہ پھر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معاملہ ہندو اور مسلمان کا ہے۔
کشمیر از اے ویری کمپلیکیٹڈ پلیس۔ یو ہیو دی ہندوز اینڈ یو ہیو دی مسلمز اینڈ آئی وڈنٹ سے دے گیٹ الونگ سو گریٹ اینڈ دیٹس واٹ یو ہیو رائٹ ناؤ اینڈ یو ہیو ملینز آف پیپل دیٹ want to be ruled by others and maybe on both sides and you have two countries that haven't gotten along well for a long time۔
ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہے اور بہت الجھا ہوا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ثالثی کر سکوں۔ وزیر اعظم خان اور وزیر اعظم مودی سے میرے بہت اچھے مراسم ہیں، دونوں بہت اچھے ہیں۔ میں تو وزیر اعظم مودی سے اسی ہفتے کے آخر میں فرانس میں ملاقات بھی کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔
سلیم رضوی، اور پاکستان کی کوشش ہے کہ امریکہ یا کوئی بھی ملک اس جموں کشمیر کے تنازع میں مصالحت کرے، جبکہ انڈیا اس تنازع کو دو طرفہ طریقے سے حل کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ دلی سے ہمارے ساتھی مرزا عبد الباقی نے اب سے کچھ دیر پہلے سری نگر میں نامہ نگار عامر پیرزادہ سے حالات معلوم کیے، جو کل ہی شوپیاں سے واپس آئے ہیں۔
پورے شوپیاں میں جو مین ٹاؤن ہے وہاں پہ سیکورٹی پریزنس بالکل بھی نہیں تھی، ساری سیکورٹی اٹھا دی گئی تھی، کوئی بھی سیکورٹی فورس کسی بھی سڑک چوراہے پہ نہیں ہمیں دکھا۔ لیکن ایک اسٹرینج سی بات، عجیب سی بات یہ تھی کہ کوئی بھی دکان نہیں کھلا تھا، کوئی بھی سویلین سڑک پہ نہیں تھا۔ یہ کنٹراسٹ تھا، جب کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں تھی اور لوگ بھی باہر نہیں آئے، تو ہم نے کل لوگوں سے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں لوگ اگر ریسٹرکشن نہیں ہے، کرفیو نہیں ہے۔ تو ان کا جواب ہے گورنمنٹ کی طرف سے کرفیو اٹھا ہے لیکن ہماری ناراضگی نہیں گئے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے بہت سارے لوگ جن کو ڈیٹین کیا گیا ہے، ان نے کہا کہ بہت سارے ہمارے بچوں کو، ہمارے آدمیوں کو، بہت سارے آدمیوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے، جس میں راتوں کو ریڈز پڑتی ہیں ان کے گھروں میں، جس کے سلسلے میں ہم آفیشل سے بات نہیں کر پائے کیونکہ ابھی آفیشل کوئی اویلیبل نہیں تھا اس سلسلے میں۔
دوسرے علاقات سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ کیا ہو رہا ہے؟
جیسا ہم دیکھ پاتے ہیں ابھی آلموسٹ 15 دن ہوئے ہیں اس پورے لاک ڈاؤن کو، جب کسی کے پاس کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی موبائل فون نہیں ہے۔ جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے ہم نے لینڈ لائنز کھولی ہے، وہ لینڈ لائن بھی کچھ چھوٹے نمبر میں کھولی گئی ہے، جو سینٹرل سری نگر سول لائنز میں کھلی ہے۔ ادروائز اگر ہم میجورٹی کشمیر کی بات کریں، کہیں پہ بھی کوئی کمیونیکیشن ابھی تک نہیں ہے، کوئی اپنے اپنوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ سو کمیونیکیشن کا جو بلاکیڈ ہوا، اس کی وجہ سے ہم سے خبریں بہت دور ہیں۔ ہم جو آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں ہم صرف اس چیز کو رپورٹ کر پا رہے ہیں، ادروائز باقی سب رومرس ہی کہلائے جاتے ہیں کشمیر میں۔
یہ تھے نامہ نگار عامر پیرزادہ، جو کل ہی بھارت کے زیر انتظام شوپیاں سے واپس آئے ہیں۔ جموں کشمیر کے بارے میں خبروں کا خصوصی پروگرام نیم روز بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔
جب حالات کشیدہ ہوں اور باخبر رہنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو،
انفارمیشن اتنی ہے جتنی ہمیں انٹرنیشنل میڈیا سے پتہ چلتی ہے، کے علاوہ کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے،
تو سنا کیجئے کشمیر کے بارے میں بی بی سی اردو سروس کا خصوصی پروگرام نیم روز۔ ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر بھی ہر روز براہ راست۔
پاکستان اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر بھی کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ انڈین اور پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے دونوں جانب ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تفصیل سنیے سحر بلوچ سے۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے اس سلسلے میں ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستانی فوج نے انڈین فائرنگ کا مؤثر جواب دیا، جس کے نتیجے میں 6 انڈین فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ انڈیا کی جانب سے ایل او سی پر تتا پانی سیکٹر میں انڈین فائرنگ سے ایک 7 سالہ بچے سمیت 3 شہری ہلاک ہوئے تھے، جس کے جواب میں پاکستانی فوج نے یہ کاروائی کی۔ حالیہ کشیدگی کے دوران لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے کم از کم 5 پاکستانی شہری اور 4 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستانی فوج نے 11 انڈین فوجیوں کی ہلاکت کے بھی دعوے کیے ہیں۔
سحر بلوچ، انڈین حکام کا دعویٰ ہے کہ ان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد وادی میں مظاہرے کم ہوئے ہیں۔ تاہم بی بی سی ہندی کے نامہ نگار عامر پیرزادہ نے بتایا کہ سری نگر میں متعدد مقامات پر مظاہرے ہوئے اور سیکورٹی فورسز نے مظاہرین پر پیلٹ گن سے فائرنگ بھی کی۔ بی بی سی نے پیلٹ گن کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے ایک کشمیری سے بات کی۔
میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ میری ٹانگ پہ لگی ہے، जिनकी आँख पे लगी है उनको क्या हुआ होगा। मैं भी थोड़ा आगे जा रहा था और उसके बाद उन्होंने मुझे टारगेट बनाया और मेरी टांग पे जो राइट साइड की उन्होंने टारगेट किया और मैं वहीं पर गिर गया। जब मैंने लेफ्ट हाथ ऐसे राइट टांग पे लगाया तो बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। तभी किसी ने, जब मैं आगे गया तो किसी ने स्कूटी पे उठाकर मुझे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बोला है कि ये पूरा कॉटरेज ही अंदर गया है। हमें तो जख्म लगी है, जब हम ठीक हो गए तो इंशाल्लाह हम फिर से निकलेंगे।
पैलेट गन्स की फायरिंग से एक जख्मी कश्मीरी। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारे खोलने के ऐलान के बावजूद असातिज़ा की हाज़िरी 30-50% के दरमियान रही है, जबकि बेशतर स्कूलों में बच्चों की हाज़िरी ना होने के बराबर रही। एक कश्मीरी वालिद का कहना है कि वो इन हालात में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते।
हमारे बच्चे घरों में सहम कर रह गए। कौन सी गवर्नमेंट ये है बच्चों को, छोटे बच्चों को घरों में हम बंद करके रखे हुए हैं कि बाहर जाए कहीं कहीं से कोई कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारे बच्चे पैलेट के मारे या किसी और वजह से ज़ख्मी हो जाए। इस वजह से हम बच्चों को स्कूल भेजना ना पसंद करते हैं। आप मुझे दिखाइए कौन सी स्कूल बस आई है, जिस स्कूल बस ने बच्चों को उठाया स्कूल लिया। कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरे हमारे बच्चे रिस्क में पड़े।
एक वालिद, और जबकि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में स्कूल ना जा पाने वाली एक तालिबा का कहना है कि वो अपने स्कूल जाना चाहती है और दोस्तों से मिलकर अपने तालीमी सिलसिले को दोबारा से शुरू करना चाहती हैं। उन्होंने मजीद कहा,
मैं अपने स्कूल को मिस करती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल को मिस करती हूँ। हर एक चाहता है कि वो पढ़े, कुछ बने अपनी लाइफ में, बट इन हालात की वजह से कोई अपना जो गोल है वो अचीव ही नहीं कर पा रहा है। अगर हम स्कूल गए तो पीछे से हालात ख़राब हो गए, हमारे घर वालों को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कुछ हुआ। या अगर हम स्कूल गए तो हालात ख़राब हो गई, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा अगर हमारी लाइफ के साथ कुछ भी हो गया।
जम्मू कश्मीर के एक तालिबा। और कश्मीर के हालात पर ट्वीट्स करने के बाद इंडिया के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक तालिबा और यूनियन की साबिक नायब सदर और इंसानी हकूक की कारकुन शहला रशीद सोशल मीडिया पर मौजूए बहस रही हैं। अपनी ट्वीट्स में शहला ने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज पर तनकीद की थी। बीबीसी के नामा निगार मुनज़्ज़ा अनवार ने शहला रशीद से बात की और पूछा कि ये पहली मरतबा नहीं कि उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, मगर अब की बार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्यों?
ऐसे वक्त में जब लाखों कश्मीरी खानदान आपस में रابطہ नहीं कर पा रहे, जब इंसानी हकूक की वहाँ शदीद खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, आम लोगों के खिलाफ पैलेट गन, पेपर गैस और आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को खबरों तक किसी किस्म की कोई रिसाई नहीं। ऐसे में मेरे खिलाफ किसी कानूनी चाराजोई से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, ना ही खुद को लेके परेशान हूँ। जिस तरह आइन के आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया, हमारे हुकूक हमसे छीने गए, हमारी सारी तवज्जो इस पर होनी चाहिए।
शैला, आपने अपनी ट्वीट्स में इंडियन आर्मी पर इंसानी हकूक की जिन खिलाफ वर्जियों के इल्जाम आयद किए थे, उसके बारे में आपसे सबूत मांगे जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी?
मैंने जो कुछ भी लिखा वो कश्मीर से आने वाले लोगों से की गई गुफ्तगू पर मुश्तमिल है, और इंसानी हकूक की कारकुन होने के नाते मेरा काम है कि मैं कश्मीर में होने वाली ज्यादतियों पर रोशनी डालूं। लेकिन ये हकीकत खासी हैरानकुन है कि दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज में से एक ने ये जरूरी समझा कि वो मेरे बयान पर रद्द अमल जाहिर करें। अगर ऐसी कोई तहकीकात हो तो मैं बखुशी उन्हें इन तमाम वाकयात की तफसीलात फराहम करूंगी जो मैंने शेयर किए।
दिल्ली की तालिब इल्म रहनुमा शैला रशीद बात कर रही थी मुनज़्ज़ा अनवार से। और इसके साथ ही नीमरोज़ का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आखिर में अहम खबरों का खुलासा।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर के मसले को हल करने के लिए बतौर सालिस किरदार अदा करने की पेशकश की है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने दावा किया है कि इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के शहर बारामूरा में एक मुबैना असरियत पसंद को झड़प के दौरान हलाक कर दिया गया है। इंडियन और पाकिस्तानी हुकाम ने दावा किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग से दोनों जानब हलाकते हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऑयल टैंकर्स और सामान बरदार बहरी जहाज़ों को ईरान से बचाने के लिए अमरीका की सरबराही में बनने वाले इतिहाद में शामिल होने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने ताइवान को F-16 लड़ाका तैयारें फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। इन तैयारों की मालियत 8 अरब अमरीकी डॉलर है। امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈنمارک کے اپنے دورے کو منسوخ کر دیا ہے. اس کی وجہ ڈینش کے وزیر اعظم کی جانب سے امریکہ کو گرین لینڈ فروخت کرنے میں عدم دلچسپی ظاہر کرنا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.